प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 सितंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपसे आप सबसे एक अनोखे किस्म के प्रेम के बारे में बात करने जा रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि प्रेम तो हमने सुना है लेकिन ये अनोखे किस्म का प्रेम क्या है। डेफिनेटली शायद सुनने के बाद मैं कह नहीं सकता आपको अनोखा न लगे, लेकिन कभी कभी जब मैं आज के संदर्भ में सोचता हूं तो या यूं कह लीजिए कि जो हमारा समाज है, जो सामंतवादी संस्कारों से जकड़ा हुआ समाज है, जब उसके बारे में सोचता हूं तो फिर मुझे यह थोड़ी सी अनोखी जैसी ही बात लगती है। और मित्रों अर्थ आप खुद निकालिएगा कि यह अनोखा प्रेम किस तरह का प्रेम है, लेकिन यह प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो किया ही जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेम में आप किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकते, किसी के सामने आप प्रेम याचना नहीं करते कि कोई दूसरा हो तभी आप प्रेम करेंगे, जब कोई दूसरा आपके प्रेम को स्वीकार करेगा तभी आप प्रेम करेंगे, कोई दूसरा अगर आपके प्रेम को ठुकरा देगा तो पता लगा कि आप फिर देवदास बनने के करीब पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रेम नहीं है, यह एक ऐसा प्रेम है, ऐसा अद्भुत प्रेम है जिसके दो सबसे बड़े गुण हैं। पहला तो यह है कि इस प्रेम के आप खुद मालिक होते हैं, शासक होते हैं, राजा होते हैं, सम्राट होते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, न किसी के सामने याचना करनी, हाथ फैलाना है, न किसी के सामने प्रस्ताव रखना है, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है वो आप हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस प्रेम में कभी भी धोखा नहीं होगा, जिसको हम जनरली धोखा कह देते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि प्रेम में कभी धोखा हो ही नहीं सकता, अगर वो धोखा था या हो गया तो फिर प्रेम वो नहीं था, मतलब मैं तो ये मानता हूं। चलिए, लेकिन जग व्यवहार अलग होता है, फिलॉसफी अलग होती है, वहां तो धोखा होता है, यहां कोई धोखा ही नहीं है। और वो जो प्रेम है जिसके बारे में आप सब खूब जानते हैं, आप सबके अच्छे कड़वे अनुभव भी होंगे, उस प्रेम में कभी कभी गड्ढा भी मिल जाता है और पता लगा कि उस गड्ढे में हम ऐसा गिरे कि जिंदगी भर तक उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर दिमाग में हमारे किसी का इस तरह से कोई घर कर जाए, किसी का प्रेम न मिल पाए तो गड्ढा ही बन जाता है एक प्रकार से, किसी के लिए तो वो चलिए वो पर्वत भी बन जाता है और ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, लेकिन काश ऐसा सबके साथ होता नहीं है। ये प्रेम ऐसा प्रेम है जहां गड्ढा है ही नहीं, ये प्रेम एकदम शिखरों की यात्रा है जो आपको लगातार ऊपर ऊपर और ऊपर ही ले जाती है। घाटी है ही नहीं है, खाई है ही नहीं है, दरार है ही नहीं। अब आपको थोड़ी सी जिज्ञासा हुई होगी कि भाई आखिर में ऐसा कौन सा प्रेम आ गया। मित्रों बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही प्रेम के बारे में बताता हूं। आइए मैं शुरुआत करता हूं एक बड़े विचित्र किस्म के उदाहरण से। जब मैं भी उस व्यक्ति का नाम लूंगा तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को इतराज हो कि यार इस आदमी का नाम सर आप क्यों ले रहे हैं, इस आदमी को कोट क्यों कर रहे हैं। देखिए किसी भी आदमी ने कोई भी कुछ काम गलत ही किया हो, बहुत गलत किया हो, लेकिन अगर कोई चीज है जो उसने सही कहा है या जिससे हम कोई अच्छी सीख ले सकते हैं तो उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। और यहां तक कि अगर उसने गलत काम किया है तो उससे भी हम सीख ले सकते हैं कि भैया गलत काम करने के ये परिणाम होते हैं, तो सीख तो दोनों ही चीजों से ली जा सकती है। तो अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूं मित्रों, उनका नाम है एडोल्फ हिटलर, है ना। हिटलर के बारे में आप जानते हैं। तो हिटलर का एक यातना शिविर है, कंसंट्रेशन कैंप, ये पोलैंड में है और इस जगह का नाम है आश्विच। मैं यहां गया हुआ हूं, ये जो यातना शिविर है इसको मैंने देखा है। ओ गॉड, आप देखेंगे तो अंदर से दहल जाएंगे जब बताया जाता है कि यहां ये था, ऐसे ऐसे होता था, तो आप एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटली, और मैं तो सच में डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन वहां सीखने की बात क्या है, सीखने की बात यह है कि जब आप उस आश्विच के में एंटर करेंगे यातना शिविर में, तो उसका एक एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार है, वहां एक वाक्य लिखा हुआ है। देखिए वो वाक्य क्या है, कार्य मुक्ति दिलाता है। बस केवल मित्रों ये चार शब्द हैं, कार्य मुक्ति दिलाता है, बस कार्य मुक्ति दिलाता है। आपको नहीं लग रहा है कि कितनी अद्भुत बात है, चाहे किसी ने भी लिखवाया हो, जिसने भी है, चूंकि अब वो हिटलर ने वो यातना शिविर तैयार करवाया था, तो यहां हिटलर का नाम लेते हैं। अब पता नहीं हिटलर को मालूम भी था या नहीं मालूम था कि उसके यातना शिविर पर यह लिखा गया है। लेकिन मित्रों, एक बहुत अद्भुत वाक्य तो लिखा गया है जो केवल चार शब्दों का है, कार्य मुक्ति दिलाता है। मुक्ति किसमें है? मुक्ति भागने में नहीं है, मुक्ति टालने में नहीं है, मुक्ति छोड़ने में नहीं है, मुक्ति सच पूछिए तो कार्य में है। मैं आपको एक अपने मनोविज्ञान की बात कर बताता हूं मित्रों, कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो। मेरा मनोविज्ञान यह है कि जब मैं कोई मोटी किताब पढ़ रहा था, पतली वतली किताब तो नहीं, जब मैं मोटी किताब पढ़ता हूं और वो किताब खत्म हो जाती है, या जब यहां मैं 15 दिन की क्लासेस होती हैं तो क्लासेस शुरू होती हैं और एक दिन वो 15 दिन पूरे भी हो जाते हैं, वो क्लास खत्म हो जाती है, तो मेरे दिमाग में एक साथ दो थॉट्स आते हैं। मतलब मैं विचित्र किस्म के सुख और दुख की अनुभूति करता हूं। दुख इस बात का होता है कि यार ये काम खत्म हो गया, लो अब ये काम खत्म हो गया। कितना अच्छा होता ना कि ये काम खत्म नहीं होता, हम काम में लगे रहते, तो काम के खत्म होने का दुख होता है। तो फिर आप कहेंगे पर सुख किस चीज का होता है? सुख ये सोच करके होता है कि यार ये काम संपन्न हो गया, ये काम पूरा हो गया। अब दोनों एक ही साथ होते हैं, काम पूरा कर लेने का सुख भी मिलता है, आत्मिक संतोष की, यार देखो हमने इस काम को पूरा किया और अच्छे तरीके से पूरा किया। देखिए संतोष तो तभी होता है जब आप उसे अच्छे से पूरा करें, अदरवाइज टाला मटोला करके आपने पूरा किया, टाल मटोल तो नहीं संतोष मिलेगा। तो काम के संपन्न होने का संतोष सुख मिलता है और उसके खत्म हो जाने का कम से कम मुझे तो दुख भी होता है मित्रों, दुख होता है। अब यहां मुझे लगता है कि सच में कार्य मुक्ति दिलाता है। मतलब मैंने जब ये वाक्य पढ़ा तो मैं अंदर से एकदम आह्लादित हो उठा कि यार क्या बात कही है, ये बात तो दिमाग में आई ही नहीं थी कि जो मुक्ति है वो कार्य में ही। हमें लगता है कि काम मिलने से हम और बंधन में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं, नॉट एट ऑल। कार्य में ही मुक्ति है, करने में ही छुटकारा है। एक आपने नाम सुना होगा खलील जिब्रान साहब का, बहुत 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 प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, और इनकी जो लघु कथाएं हैं और इनके जो आदर्श वाक्य हैं, उपदेश प्रधान जो वाक्य हैं, कोट हैं आप कह लीजिए, वो बहुत ही गजब के, मतलब मेरे तो बहुत ही प्रिय रचनाकारों में है ये, बहुत ही प्रिय रचनाकारों में, इन्हें मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूं। और आपको कभी इनकी छोटी छोटी लघु कथाएं मिले ना, छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं इन्होंने बहुत सी, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत गजब की कहानियां लिखते हैं और छोटी चीजों में इतनी गहरी बातें कह जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता, वो तो केवल खलील जिब्रान साहब ही बता सकते हैं। तो मित्रों अब देखिए कि इन्होंने क्या कहा है, इनका भी मैं आपको एक वाक्य पढ़कर सुना देता हूं। श्रम प्रेम को प्रत्यक्ष करता है, आप देख रहे हैं, श्रम प्रेम को प्रत्यक्ष करता है। जब तुम प्रेम पूर्वक श्रम करते हो तब तुम अपने आप से, एक दूसरे से और ईश्वर से संयोग की गांठ बांध लेते हो। नहीं लगा आपको कि ये कुछ अनोखे किस्म का ही प्रेम है? इस तरह के प्रेम के बारे में तो हमारे दिमाग में कभी कोई बात आई ही नहीं थी। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई हो। मैं मित्रों इस खूबसूरत वाक्य को यहां रिपीट करता हूं, श्रम प्रेम को प्रत्यक्ष करता है, यानी कि जो आपका प्रेम है याद रखिए वह केवल श्रम के माध्यम से ही सामने आता है, कहने से नहीं करने से आता है, श्रम करना होगा उसके लिए। श्रम प्रेम को प्रत्यक्ष करता है, जब तुम प्रेम पूर्वक श्रम करते हो तब क्या होता है, तब तुम अपने आप से, तब सही मायने में आप अपने से जुड़ते हैं, एक दूसरे से, दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप ईश्वर से जुड़ते हैं। श्रम प्रेम को प्रत्यक्ष करता है, जब तुम प्रेम पूर्वक श्रम करते हो तब तुम अपने आप से, एक दूसरे से और ईश्वर से संयोग की गांठ बांध लेते हो। क्या बात कही है फ्रेंड्स। आपने फ्रायड का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत ही महान मनोवैज्ञानिकों में माने जाते हैं। फ्रायड जब बूढ़े हो गए थे तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि फ्रायड साहब अब आप ये बताइए, आपने तो बहुत काम किया है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो आप ये बताइए कि अब हमारे जो यंग ग्रुप है, जो हमारे युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये उनसे पूछा गया था। मित्रों, फ्रायड ने केवल तीन शब्द बोले थे, केवल तीन शब्द। उन्होंने कहा था कार्य और प्रेम, यानी कि जो युवा हैं वो काम करें और प्रेम को समझें, प्रेम करें, यही उनका कहना था। लेकिन याद रखिए कि वो जब कहते हैं कि प्रेम करें तो उसे समझना होगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो सामान्य प्रेम नहीं है, वो खलील जिब्रान वाला प्रेम है। उनके कहने का मतलब था कि वो कार्य से प्रेम करें, प्रेम करें लेकिन अपने काम से प्रेम करें। और मित्रों, जिस दिन आपको अपने काम से प्रेम हो जाता है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, मान करके चलिए कि आपको बहुत से लोगों का प्रेम मिलना शुरू हो जाता है, बहुत से लोग आपको प्यार करने लगते हैं। और कल्पना करके देखिए कि जब बहुत से लोग आपको प्यार करेंगे तो आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, आपको कितनी अधिक आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसे ही मैंने कहा है आज एक अनोखा प्रेम। और ये जो अनोखा प्रेम है, इनफैक्ट सच पूछिए तो या तो आप इसे काम से प्रेम कह लीजिए, या इसे थोड़ा सा और व्यापक बना दें तो आप कह सकते हैं श्रम से प्रेम। और मेरे लिए ये श्रम से प्रेम ही अनोखा प्रेम है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।